اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ شبیر رضوی، آج کا پروگرام فکر و نظر آپ کے لیے لایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ہوگی، جو کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی اور امیگرنٹ کمیونٹی یہاں پر یونائیٹڈ کنگڈم میں اور یورپ میں رہ رہی ہے، ان کے فیملی کے تعلق سے جو مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں، اور خصوصاً شادی کے تعلق سے، اسپاؤس سلیکشن کے تعلق سے۔ آج کا ٹاپک جو ہوگا، ہم ایک اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ آیا کہ بیرونی ممالک سے شوہر اور بیوی کا لانا، یو کے میں جن بچوں کی پرورش ہوئی ہے، جس جنریشن نے یہاں پر زندگی گزاری ہے، ان کے لیے کیسا مناسب پیش آتا ہے یا اس کی کیا دشواریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ دو مقبول ہستیاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت، جن کے ساتھ ہم یہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں مولانا سید محمد رضوی صاحب۔ السلام علیکم، ویلکم۔ سید محمد رضوی صاحب ایک معروف شخصیت ہیں یو کے میں، اور ریگولر براڈ کاسٹر ہیں، یہاں پر کئی ٹاپکس پر پریزنٹیشنز کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اسلامک سینٹر یو کے میں جو فیملی سیکشن ہے، سوشل افیئرس، فیملی اور سوشل افیئرس کا سیکشن جو ہے، اس کے ہیڈ بھی ہیں اور گریجویٹ ہیں حوزہ علمیہ خم کے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر ابو طالب زیدی صاحب، جو یہاں پر یو کے میں کئی برس سے ہیں، اور ماشاءاللہ اکیڈیمک بھی ہیں، لنگوسٹ ہیں، اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے لیکچر ہوا کرتے تھے یو کے آنے سے پہلے۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، ہم پہلا سوال، جیسے میں نے آغا صاحب اوپننگ کامنٹ میں کہا تھا کہ ایک جو سوشل ایشو پچھلے میں تقریباً 15-20-25 سال سے جو دیکھ رہا ہوں یو کے میں، اور خصوصاً کیونکہ کمیونٹی یہاں پر 50 سال سے رہ رہی ہے، یعنی کہ انڈیا، پاکستان، ساؤتھ ایشیا کی کمیونٹی تھرڈ جنریشن کے فیز میں، اور جو ڈسکشن 25 سال پہلے ہوتا تھا کہ شادی کے موضوع پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، چاہے وہ یعنی کہ وائف ہو یا ہسبینڈ ہو، اس کو لایا آسان سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل جو نوجوان شادی کے ایج کے ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہے، تو اس کی یعنی کہ کیا ریزنز ہیں آپ کے خیال میں آزا؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ سب سے اہم ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے، بقول آپ کے، جو لوگ باہر سے اسپاؤس کو لے کے آئے، اپنے میاں یا بیوی کو لے کے آئے، یا ارینج میرج کے تھرو لوگ جو یہاں پر آئے، ان میں جو پریشانیاں اور مشکلیں پیش آئیں، اس کی وجہ سے یہاں کی ینگر جنریشن نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ البتہ ابتدا میں ایسی مشکلات نہیں تھیں، کیونکہ خود جو زیادہ تر لوگ جو آئے تھے یہاں پر وہ خود امیگرنٹ تھے، اور پھر بعد میں کچھ عرصہ یہاں سیٹل ہونے کے فوراً بعد ہی اپنے اسپاؤس کو، یعنی میاں یا بیوی کو، باہر سے لے آئے، تو وہ ایک ہی کلچر،
وہ تو پہلے سے شادی شدہ،
جی پہلے سے شادی شدہ تھے، یا امیڈیٹلی جیسے یہاں آئے شادی کر لی، سیٹل ہوتے ہی شادی کر لی، تو ان میں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں جب جو ان کے بچے یہاں پہ، یعنی فرسٹ جنریشن کے بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے اور یہاں پہ بڑھنا شروع ہوئے، تو انہوں نے، ان کے پیرنٹس نے اس آئیڈیا کو امپوز کیا ایک قسم کا، کہ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے جو ہیں یہیں پہ شادی کریں۔ ان کا مقصد اکنامیکل تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یعنی بہن بھائیوں کے بچوں کو بھی کسی بہانے سے یہاں پر منتقل کر دیا جائے، اور یعنی اپنے بچوں کے بارے میں کم سوچا، ایکسٹینڈیڈ فیملی کے بارے میں زیادہ سوچا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خیالات، جو بچے یہاں کے پلے بڑے تھے، ان کے خیالات ان کے اپنے کزنز کے ساتھ جو باہر سے آئے تھے نہیں ملتے تھے، اور اس میں کافی مشکلات اور ڈیورسز اور پرابلمز کا सामना करना पड़ा, तो इसकी वजह से फिर थर्ड जनरेशन जो है और उनके पेरेंट्स ने इस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए थर्ड जनरेशन के ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यही कहते हैं कि वी डोंट लाइक टू बी मैरिड टू फ्रेशी, यानी
वो एक नई टर्म जो दिख रही है,
नहीं
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 ताजा लोग जाए भाई यार
हम
पर
ताज़ा इमिग्रेंट लोगों के साथ शादी करना पसंद नहीं करते,
सही
तो ये एक ट्रेंड है।
सही
अलबत्त ये सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी कल्चर से ही मरबूत नहीं है, बल्कि क्योंकि मैं एज ए फैमिली एंड सोशल अफेयर्स ऑफिस में जो काम करता हूँ वहाँ पे इस्लामिक सेंटर में, अरब, ईरानी, अफगानी, सारी सारे इमिग्रेंट कल्चर्स में ये प्रॉब्लम्स जो हैं मौजूद हैं और इनका सामना करना पड़ रहा है।
सही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैदी, आप ये यानी कि आगा साहब ने तो कई जनरेशन्स का जो मौजू यहाँ पर बताया है, ये क्वेश्चन के सिर्फ ये बाहर से बीवियों का लाना या शोहरों का लाना सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी में है, या आप देखते हैं कि दूसरी कम्युनिटीज़ यानी कि मसलन कैरेबियन की कम्युनिटीज़ हैं, दूसरी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ जो यहाँ पर हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनके यहाँ भी ये सिस्टम राइज है या ये स्पेसिफिकली मुस्लिम मैटर है? आपके एनालिसिस से क्या?
इमिग्रेंट कम्युनिटी जैसा कि मौला ने बताया कि हम
क्योंकि यहाँ पर
इमिग्रेशन
हिंदू इमिग्रेंट
जी
कम्युनिटी भी है, सिख्स भी हैं, कैरेबियन को छोड़ के जो साउथ एशिया के दूसरे हैं वो लोग भी क्या यही करते हैं?
चाइनीज हैं
हाँ
मतलब।
बेसिकली जो चीज़ पैदा हो रही है, शादी करना अपने समाज में वापस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कैरेबियन, बेसिकली इसकी वाहिद वजह जो हम समझते हैं और जो सबसे अहम वजह है वो कल्चर, कल्चर से मुतालिक और सारी चीज़ें हैं। लेकिन कम्युनिटी जब शुरू शुरू यहाँ आई, छोटी कम्युनिटी थी उस वक्त, वजूहात अलग थी वापस अपने मुल्कों में शादी करना। लेकिन जब कम्युनिटी बढ़ी, यहाँ पर भी बच्चे होने लगे, यहाँ पर शादियाँ थोड़ी बहुत हुईं लेकिन शादियाँ उतनी कामयाब नहीं हुईं। फिर उसके बाद वालदैन ने सोचा कि वापस अपने मुल्कों में शादियाँ की जाएँ अपने बच्चों की, वो सिक्योरिटी, सेफ्टी और एक लॉन्गिट्यूटी लाते हैं, चाहे वो वहाँ से ख़वातीन का लाना हो या लड़कों का लाना हो। वालदैन हमेशा अपने कल्चर के मामले में बहुत कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हर कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा, मतलब जिसको कहिए कि एक प्रिंसिपल है उसका, हर कम्युनिटी का एक
एक
मॉरल
रूह
प्रिंसिपल
होती
है,
है
एक रूह
यानी कि
होती है।
कम्युनिटी की
तो
जी।
प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इस बात से रहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी कम्युनिटी और हमारा माशरा जो है मुकामी माशरे में ज़म हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जिसके इम्कानात पाए भी जाते हैं, ऐसी चीज़ें नामुमकिन नहीं हैं। और वालदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि ये देरपा असरात को सोचें और इस पर फौरी तौर से एम्बार्गो लगाएं या इसके हिसाब से जो टाइम रिलीज जैसी चीज़ें हो सकती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। ये चीज़ सिर्फ इस्लामी या मुसलमान कम्युनिटी से मुतालिक नहीं है, हर कम्युनिटी में, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो या आप हिंदू कम्युनिटी हो या दूसरी कम्युनिटीज़ हों, जो भी हों, या आप, मैं जानता हूँ हमारा मुताला अरब कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी से मुतालिक नहीं है, मौलाना आपको सिलसिले में ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ये एक आम सी चीज़, ये एक कल्चरल कॉन्शियसनेस है कि अगर हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं किया तो हम ज़म हो जाएंगे। और फिर हर कम्युनिटी की, हर इंसान की, हर शख्स की वो एक ज़ाती शख्सियत होती है, ज़ाती आइडेंटिटी होती है, और ये चीज़ हर कम्युनिटी में पाई जाती है। और वापस शादी करना, इसीलिए वालदैन बार बार इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों की शादियां वापस अपने मुल्कों में की जाएं, ताकि कुछ दिनों और इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और अपने कल्चर को कुछ दिनों और प्रिजर्व किया जा सके।
जी आपने ये बहुत अच्छे नुकता लगाया कि कुछ दिनों तक ये सिस्टम को कायम रखा जाए, तो यानी कि चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, क्योंकि अक्सर गुफ्तगू जो प्रेस में होती है मुसलमानों के ताल्लुक से होती है कि मुसलमान जो है अपनी स्पाउसेस को बाहर से लेके आते हैं, मगर यकीनी तौर पर हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी में भी ये राइज है, तो ये
हाँ
प्रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कितने बरस तक रह सकता है? 10 साल,
देखिए
20 साल, 40 साल, 50 साल, कितनी जनरेशन तक? क्योंकि एक जो नजरिया वेस्ट ने पेश किया है कि हमें 3 जनरेशन दे दो और हम जो है आपके कल्चर को चेंज कर
देखिए,
देंगे
आपने खुद ही बात कही, ये तो हमारे जहन में बात थी नहीं
तो
और न मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन
जी
बहैसियत एक लिंग्विस्ट के मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि जहाँ जब 20% की आबादी 80% के दरमियान रहेगी तो वो 80% के असरात आहिस्ता आहिस्ता कबूल
यकीन तौर
करेगी,
जी
और वो असरात मुकम्मल तौर पर 100% उस पर कब नाफिज हो जाएं, इसकी मुद्दत 10 साल भी हो सकती है, 15 साल, ये आपकी कुव्वत
जी,
दिफा पर
वेस्टर्न
मुनहसर,
कल्चर ने 3 जनरेशन का यानी
आपकी
कि 50 साल का जिया है
माइनॉरिटीज की कुव्वत दिफा पर मुनहसर करता है कि वो कितने दिन इसको दिफा कर पाती है, और कुव्वत दिफा उसकी अपनी ज़ाती तरबियत से पैदा होती है कि उसने कैसी तरबियत पाई थी। एक वालदैन जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं वो इस चीज़ को दिफा कर सकते हैं ज़्यादा लंबी मुद्दत तक, लेकिन एक वो वालदैन जो जनूबी आसियाई मुल्कों से यहाँ माइग्रेट किए और जिनका प्रोफेशन मसलन टैक्सी चलाना था, उनमें उतनी कुव्वत दिफा नहीं पाई जा सकती है, उनमें वो मंतिक नहीं पाई जा सकती है, और वो फौरन सकम हो जाते हैं मुकामी कल्चर के पे, और उनके यहाँ ज़्यादा इम्कानात हैं कि बच्चे जल्द ज़म हो जाएंगे मुकामी कल्चर में। अब ये बात अलग है कि मुकामी कल्चर में ज़म होना अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं इस मौजू पर नहीं
जी,
बोलता,
वो अलग
वो अपना एक
जी,
अलग मौजू है,
जी, जी,
लेकिन कल्चरल कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ी बात, एक कल्चरल आइडेंटिटी, इंसान की फरहंगी शिनाख्त जो है वो बहुत ही अहम चीज़ होती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को उठा के देखिए दुनिया में, ये एक नहायत ही अहम चीज़ होती है।
अगर साहब तो गुफ्तगू हमारी यहाँ पर पहुँची है कि एक जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है जिसको जो इमिग्रेंट कम्युनिटी होती है वो प्रिजर्व करना चाहती है, कितनी मुद्दत तक प्रिजर्व कर सकती है ये यानी कि उस पर गैस की जा सकती है, उस पर यानी कि तजिया किया जा सकता है, मगर यकीनी तौर पर ये डेफिनेट है कि सोसाइटी जब बेरूनी ममालिक से यूके में आती है तो यहाँ की कुछ प्रैक्टिसेस, यहाँ की कुछ थिंकिंग एडॉप्ट कर लेती है वो कम्युनिटी, और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि यानी कि वो कम्युनिटी सोशल स्टेटस में कहाँ पर है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। आपके जो जिस डिपार्टमेंट में आप यानी कि देखभाल करते हैं कम्युनिटी की, वहाँ पर आप बता रहे थे कि अरब ममालिक के भी हैं, मुसलमान दूसरे हैं, तो ज़्यादातर जो गुफ्तगू यंगर जनरेशन से होती है वो जो आप कह रहे थे कि जो ताज़ा इमिग्रेंट है उनसे शादी नहीं करें, उसके रीजंस क्या हैं?
उसके रीज़न ज़्यादातर पिछली जनरेशन ने जो तजुर्बा हासिल किया है, यानी उन्हें यह एहसास हुआ कि यानी गुजारा और अंडरस्टैंडिंग जो है आपस में कम होती है। आमतौर पे ये देखा गया, मिसाल के तौर पर अगर लड़का यहाँ बड़ा हुआ है और उसके लिए उसकी कज़न को या किसी
नॉट
नेसेसरी कज़न यानी किसी को मतलब बैक होम से इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अरब, अफगानिस्तान, किसी कंट्री से लेके आए हैं, तो मकसद ये होता है कि मतलब उसको डोमिनेट किया जाए और उसको, और फिर बाद में, और या फिर उल्टा असर होता है ये कि वो जो आदमी बाहर से आया है यानी वो औरत या मर्द जो बाहर से आई है वो यहाँ के कल्चर में अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाती, और फिर इसकी तवक्कात मतलब शौहर की तवक्कात ज़्यादा हैं या बीवी की शौहर से तवक्कात ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से क्लैश हो जाता है। और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कल्चर जो ताज़ा आए हैं उनका कल्चरल बैकग्राउंड जो है स्ट्रॉन्गर होता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पैदा होके यहाँ पल रहे हैं तो वो बकौल डॉक्टर साहब के 20% जो है 80% में रह रहे हैं वो थोड़ा बहुत कल्चर जो है वो लूज़ कर चुके हैं,
रबिंग द शोल्डर जो कहा जाता
तो
है,
फिर इसका भी क्लैश हो जाता है। इसकी मिसाल मैं कैरिबियन आइलैंड्स में जगह है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, गायाना, इन इन जगहों पे मैं जा चुका हूँ, वहाँ पर
तो तकरीबन 100 साल से
जी मसलन जब स्लेवरी को अबॉलिश किया गया तो उसके बाद वहाँ पे लेबर की ज़रूरत थी, ये ब्रिटिश कॉलोनीज थी तो इंडिया से लोगों को लेके आए रिप्लेस करने के लिए स्लेवरी को, तो फिर जो लोग वहाँ से आए वो अपना कल्चर भी लेके आए, और वो लोग क्योंकि लेबरर थे, एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्होंने सिर्फ कोशिश ये की कि मसलन मजहबी हद तक जो कुछ भी वो प्रिजर्व कर सकते थे उसको प्रिजर्व किया, बाकी वो नहीं कर सके। या मसलन अमेरिका में देखें ज्यादातर इमिग्रेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड लोग हैं तो उन्होंने वहाँ स्कूल्स शुरू किए।
अगर साहब अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम फिर दोबारा वापस आएंगे। नाजरीन, वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारी गुफ्तगू आज फिक्र नजर में हो रही थी कि बैरूनी ममालिक से शौहर या बीवी को लाना मुनासिब है, इस पर जो है सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है कम्युनिटी जो यूके में रह रही है। और साहब, ब्रेक से जाने से पहले आप कैरेबियन और अमेरिका की कुछ रोशनी डाल रहे थे कि वहाँ पर भी क्योंकि इमिग्रेंट कम्युनिटी है, उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू सिर्फ एनालिसिस के तौर पर ये बताएं कि वहाँ पर भी जिस तरह की कम्युनिटी गई है कम्पेयर टू यूके, उसमें क्या फ़र्क है?
जी, कैरेबियन आइलैंड्स में ज़्यादातर लोग स्लेवरी के अबॉलिश होने के बाद लेबर क्लास लोग गए थे लेबर को रिप्लेस करने के लिए, तो उन्होंने उस कोशिश की कल्चर को प्रिजर्व किया और उसमें बहुत ही कामयाब रहे कल्चर को। मतलब अब भी आप जाएं तो आप वहाँ के मुसलमानों में इस्लाम नहीं देखेंगे, हिंदुओं में हिंदुइज्म नहीं देखेंगे, सिखों में सिखिज्म नहीं देखेंगे, लेकिन कल्चर है।
अच्छा।
लेकिन वो रिलीजन को जो है वो भूल चुके हैं। अब इसके मुकाबले में आप अमेरिका को रीसेंट इमिग्रेशन जो वहाँ हुआ है उसको कंपेयर करें तो अमेरिका में जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो ईरान से हों, पाकिस्तान से हों, अफगानिस्तान से हों, अरब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हों, जहाँ से भी हों, ये ज़्यादातर लोग पढ़ने के लिए गए थे, एजुकेशन के लिए गए थे, तो फिर बाद में पढ़ने के बाद वहीं पर सेटल हो गए। तो उनका उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि कल्चर के साथ रिलीजन को भी प्रिजर्व किया जाए, तो उन्होंने इस्लामिक स्कूल्स वहाँ पे खोले और वो लोग यानी मजहब को कल्चर के साथ बाकी रखने में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं किसी हद तक।
अगर सब
अब इसका सही रिजल्ट क्या निकलने वाला है वो आइंदा 20-25 साल में पता चलेगा।
ये मैं पूछने वाला था क्योंकि कैरेबियन कम्युनिटी या यूके की कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो यूके में तकरीबन 50 साल से खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के
बल्कि 70 साल
मैक्सिमम, अगर जो बिग इमिग्रेशन जो है 50s में हुआ था तो 50 साल आप उससे पहले आते थे लोग चले जाते। एग्जैक्टली। अच्छा, तो एक्सपीरियंस जो है ज़रा यानी कि लिमिटेड है और उससे ज़्यादा लिमिटेड यूएसए में, क्योंकि यूएसए में पिछले 25-30 साल से तो यू मे बी इन द सेकंड जनरेशन फेज। तो जैसा आपने बताया कि आने वाले 25-30 साल में पता चलेगा कि क्या होगा, मगर डॉक्टर साहब जो कल्चरल प्रिजर्वेशन की आप बात कर रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आगा साहब ने जैसे कहा कि मजहब से कल्चर को सेपरेट कैरेबियन में हो गया, यहाँ पर यूके के जो मुसलमान रह रहे हैं और कल्चरल के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि मजहब भी पार्ट ऑफ कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हो सकता है कि जो फैमिलीज बाहर से स्पाउसेस को लाती हैं, उनकी ये अप्रोच होगी कि एक किस्म से वो मज़हब भी प्रिजर्व कर सकते हैं, कल्चर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
ये बात बिल्कुल सही, चूँकि मज़हब और कल्चर में अब अगर आप एनालिसिस करें, फ़र्क तो है ही, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए मज़हब एंड कल्चर दोनों बहुत ही जुड़ी हुई एक दूसरे से मुत्तसिल चीज़ है।
यानी कि जैसे लिबाजो पहनता है, जी
लिबास पहनता है, उसकी आए हर रोज़ की रिचुअल्स हैं, आए दिन के मतलब जो फेस्टिवल्स हैं, ईद का होना, बकरीद का होना, नजर का होना, या लोगों से मिलना, या तकरीबात हैं, या शादियों का सिलसिला है, ये सारी चीज़ें कल्चर से सामने आती हैं। ये सारी चीज़ें कल्चर है, मजहब का जिसको कही कि फरहंगी पहलू है, मज़हब का फरंगी पहलू है। और ये वजह है, कल्चर एक बहुत बड़ी वजह है और मज़हब भी एक बहुत बड़ी वजह है, कि अक्सर लोग अपने वापस वतन को रुजू करते हैं शादियों के सिलसिले में। नई नस्लें इस बात से आगाह नहीं है, चूँकि नई नस्लों ने इन चीज़ों वो कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते कि हमारे वालदैन ने अपने बचपन से लेकर 30 साल तक यहाँ की मुहाजरत के दौरान क्या देखा वहाँ, और हमारे कल्चर के इकदार क्या हैं जो हमारे वालदैन ले के आए थे, वो यहाँ पले बढ़े, उन्हें अंदाज़ा नहीं। तो वालदैन की ये कोशिश होती है कि अपने बच्चों के एक्सपोजेस जो हैं, जो उनके मतलब उनकी शादियाँ जो हैं, वापस मुल्कों में की जाए, ताकि उनका कल्चर प्रिजर्व हो सके, उनका मज़हब प्रिजर्व हो सके। ये बहुत ही अहम चीज़ है, अगर चूँकि वही आइडेंटिटी है, वही उनकी शिनाख्त है, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, फिर आप कहीं कहीं पर स्टैंड ही नहीं करते हैं।
आगा साहब, मैं अक्सर जब ट्रैवल करता हूँ इंडिया पाकिस्तान और स्पेशली बड़े शहरों में, कराची चले जाएं आप, लाहौर चले जाएं, या बम्बई या दिल्ली या दूसरे और मज़ीद दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के बड़े शहर भी हों, तो मुझे ये लगता है कि कल्चरल फ़र्क नहीं है। वहाँ की जो जनरेशन 20, 25, 30 साल की है, कॉमेडी वही देखते हैं जो लंदन में लोग देखते हैं, न्यूयॉर्क में देखते हैं, फिल्म्स वही देखते हैं, म्यूज़िक उसी तरह का सुनते हैं, लैंग्वेज भी उनकी जो स्ट्रीट लैंग्वेज कही जाती है जिसको अर्बन वोकैबुलरी कहते हैं, वो भी तकरीबन एक जैसी होती जा रही है। स्पेशली आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना पर जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, चाहे आपके तेहरान से मैसेज आ रहे हो या कराची से आ रहे हो, बिल्कुल लगता है कि वो लंदन और न्यूयॉर्क है। तो ये जो हम कल्चरल डिवीजन की बात कर रहे थे कि कल्चर इतना मुख्तलिफ है वहाँ की प्रवेश होने वाले बच्चे का कंपेयर टू लंदन या न्यूयॉर्क में, ये जेन्युइन है या सिर्फ परसेप्शन है हमारा?
ये एक नई डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में, और इसका
कल्चर इज बिकमिंग वन इंटरनेशनल, सो कॉल्ड हॉलीवुड कल्चर, आप समझ रहे हैं।
ग्लोबल विलेज में हम इस वक्त जिंदगी करते हैं, अमेरिका से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में और मुल्कों में जो है वो कल्चर तकरीबन एक होता चला जा रहा है। और ये एक और फील्ड है जिसके बारे में आइंदा 20-25 सालों में पता चलेगा कि ये मॉडर्न डेवलपमेंट्स, खुसूसन सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी ने क्या असर डाला है लोगों के ऊपर। एक मुस्बत असर ये दिखाई दे रहा है कि अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो हम इसी को कल्चर और मज़हब के प्रिजर्व करने का ज़रिया बना सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैसेजेस या कॉमेडी या जो कुछ एक्सचेंज हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वो सब सिमिलर हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। या इस वक्त जो बड़े शहरों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ लंदन के ही लिए यूनिक नहीं है, मतलब कराची में भी वही प्रॉब्लम्स हैं, तेहरान में भी वही प्रॉब्लम्स हैं, दिल्ली में भी वही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अर्बन सोसाइटी में लोग रहते हैं और वहाँ की यानी मुश्किलात जो हैं वो सामना करना पड़ता है उनको, तो उसको अडप्ट कर रहे हैं। अब इसको ये देखने की बात है कि आइंदा इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अगर हम लोग केयरफुल रहें, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव जो है, वो नेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अगरचे कोशिश की जा रही है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाले जाएं, लेकिन बातिल जो है वो हमेशा आगे रहता है ऐसे कामों में।
अच्छा डॉक्टर जैदी, इसी ज़रा गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि क्योंकि कल्चरल अक्सर हम जब लंदन में बैठ के गुफ्तगु करते हैं और इमिग्रेंट कम्युनिटी के ताल्लुक में, हमें ये अक्सर लोगों का नज़रिया होता है कि लंदन में रहने वाले बच्चे जो है मुख्तलिफ हैं, यानी कि जो दूसरे ममालिक में बच्चों की परवरिश हुई है, और क्योंकि कल्चर एक पानी की तरह होता है, वो मूव होता रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते, और खुसूसन सोशल मीडिया के थ्रू टेलीविजन एंड सो ऑन, मेरी फिक्र में डिफरेंस नहीं लग रहा है आजकल। आगा साहब ने कहा कि पता नहीं 25-30 साल में क्या होता है, तो उसका इम्पैक्ट और उसकी बिना पर ये कॉन्सेप्ट के फ्रेश इमिग्रेंट से शादी नहीं करेंगे, वो कितना वैलिड है?
और देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कल्चर, जो आप डिजिटल मीडिया से जो कल्चर मुतासिर होता है वो एक अलग बात है। दूसरी चीज़, कल्चर वो होता है जो बच्चा पैदा होने के बाद अपने वालदैन के घर में, अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में परवरिश पाता है। कितना अफ्लुएंट सोसाइटी है वो फ़र्क है। अगर आप एक्सचेंज को देखिए, इंडियन, पाकिस्तान एंड ब्रिटेन को, एक से 80, एक से 100 के बीच में फ़र्क है। ये दिस हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट अपॉन सोसाइटी। यहाँ का पैदा होने वाला बच्चा एफ्लुएंट कल्चर में है, इसके जज्बात वैसे नहीं हो सकते हैं जो वहाँ के जज्बात हैं, या वहाँ के जो जज्बात बच्चे परवरिश पाते हैं उनके जज्बात वैसे नहीं हो सकते हैं जो यहाँ के हो सकते हैं। वहाँ यहाँ की लड़कियों के वो जज्बात नहीं हो सकते हैं जो हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक आम उस्तान में या स्टेट में लड़की तालीम पाती है। दोनों के जज्बात में फ़र्क, दोनों का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अलग है। दोनों के वालदैन ने परवरिश की, एक के वालदैन ने पूरी तरह से जज्बात का सहारा दिया अपने बच्चों को, जहाँ पे पैसे नहीं थे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं था, यहाँ पर बच्चों को सिर्फ अक्ल का सहारा दिया गया, जहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो दोनों की तरबियत पर अच्छा खासा फ़र्क है यहाँ, और वो फ़र्क इंसान को जब डिसीजन लेता है तो उस पर इम्पैक्ट करता है।
शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये पता चलता है कि यकीनी तौर पर जो बच्चे की परवरिश यानी कि यूरोप और अमेरिका से बाहर होती है, उसकी फिक्र, उसका तौर तरीक़ा और इकोनॉमिक रीजंस, जैसे डॉक्टर साहब ने आखिर में कंक्लूजन में बताया कि इकोनॉमिक एफ्लुएंस की बिना पर भी इंसान की नज़रियात, इंसान की फिक्र और इंसान की सोच मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये रीजंस हैं, हो सकता है जिसके बिना पर बैरूनी ममालिक से स्पाउसेस को लाना हो सकता है मुनासिब ना हो, जो कम्युनिटी यहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में पिछले कई बरसों से रह रही है। इंशाल्लाह अगले वक्त के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ नाज़रीन।